अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है, किताब 10 करोड़ में दो शैतान, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ मजहर करीम MA। तो आइए सुनते हैं पार्ट 8। कैप्टन कौन कैप्टन? दालिद ने हैरत से कहा। कैप्टन शकील और कौन? इमरान ने कहका लगाते हुए कहा। तुम वक्त जाया कर रहे हो, बताओ, अचानक तालिब को गुस्सा आ गया। इमरान उलझन में पड़ गया कि कैप्टन शकील इतने वाजे इशारे के बावजूद अदाकारी कर रहा है। बताओ, तालिब धाड़ा और दूसरे लम्हे चाकू का फल इमरान के बाजू में घुस गया। दर्द की एक शरीर लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। दर्द से ज्यादा से कैप्टन शकील के रवैये पर हैरत दी थी। इधर सफदर भी खामोश था। बताओ वरना आंख निकाल दूंगा, तालिब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बताऊं, तुम नहीं जानते भला ये भी अदाकारी का वक्त है, इमरान को भी गुस्सा आ गया। कैप्टन शकील खामखा अदाकारी के चक्कर में पड़कर इसका वक्त जाया कर रहा है। तुम शायद किसी गलतफहमी में मुबतला हो, अब तालिब के चेहरे पर हैरत के आसार थे। क्या तुम कैप्टन शकील नहीं हो? इमरान के लहजे में हैरत थी। कौन कैप्टन शकील? मैं नहीं जानता इसे, और फिर मैं कैप्टन हो भी कैसे सकता हूँ, तालिब ने कहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर इमरान इस गैर मुतवक्का सिचुएशन पर उलझ कर रह गया। वो तो अपने तौर पर मुतमइन था कि तालिब के रूप में कैप्टन शकील हो गया। तालिब, अब तुम इमरान को बगौर देख रहा था। अचानक तालिब घूमा और फिर इसने चाकू की नोक मेजर अशफाक के सीने पर रख दी। कि क्या मतलब? मेजर गड़बड़ा कर रह गया और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। मेजर अशफाक, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, अब बताओ, तालिब ने गुर्राते हुए कहा। तो क्या तुम तालिब नहीं हो? मेजर अशफाक की आंखों में हैरत नाच रही थी। तालिब के साथ इन्हें सिचुएशन देखते ही रिवॉल्वर से टामी गन वाले को कवर कर लिया था। मैं कैप्टन शकील हूँ, तालिब नहीं, कैप्टन शकील ने कहा और मेजर अशफाक बेबसी से होंठ काटता रह गया। अब बताएं इमरान साहब कैसी रही, तालिब ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। यार वैसे तो बड़ी अच्छी रही, मगर मेरे बाजू से अभी तक खून बह रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बहने तो कोई परवाह नहीं, तालिब ने लापरवाही से कहा और इमरान एक दफा फिर गड़बड़ा गया। इसने सोचा कम से कम कैप्टन शकील ऐसा नहीं कह सकता। क्या ये कैप्टन शकील नहीं, तालिब है, वो चकराकर रह गया। इन शैतानों ने तो वाकई से चक्कर दे दिया था। हाँ तो इमरान साहब ऐसा करें, अपने तमाम साथियों को यहीं बुलवा लें, तालिब ने कहा और इमरान चौंक गया। ये यकीनन कैप्टन नहीं हो सकता। और फिर वही हुआ, अचानक धमाका हुआ और तालिब उलट कर पीछे जा गिरा, गोली इसके सीने में घुस गई थी। कैप्टन शकील और जोलिया सफदर की हिदायत मिलने की थोड़ी देर बाद मेकअप करके होटल से बाहर निकल आए। इन्होंने टैक्सी की और टैक्सी ड्राइवर को दानिश कानूनी की तरफ चलने का हुक्म दिया। सड़कों पर काफी रश था, टैक्सी इंतहाई तेजी से अपना रास्ता बनवाती हुई भागी जा रही थी। ड्राइवर काफी होशियार मालूम होता था। फिर अचानक टैक्सी जब दो बसों के दरमियान से निकलने लगी तो सामने से एक ट्रक आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने बचाने की बेहद कोशिश की, मगर एक जोरदार धमाका हुआ, टैक्सी ट्रक से चकरा चुकी थी। टैक्सी दरवाजे खाती हुई दूर जा गिरी, इसका इंजन तबाह हो चुका था। सड़क पर हंगामा बरपा हो गया, इर्द गिर्द के लोग तेजी से टैक्सी की तरफ भागे। टैक्सी ड्राइवर फौरन ही हलाक हो गया था, स्टीयरिंग वहीं इसके सीने में घुस गया था। अलबत्ता कैप्टन शकील और सफदर बच गए थे, वो दोनों बेहोश थे। छोटी मोटी चोटें तो इन्हें भी काफी आ गईं, मगर कोई शरीर चोट नहीं थी। जोरदार टकराव से वो बेहोश हो गए थे। लोगों ने जल्दी से इन्हें टैक्सी से खींचकर बाहर निकाला और फिर एक कार रोककर इन दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इन्हें फौरी तिबी इमदाद मुहैया की गई, लेकिन डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इन्हें होश न आया, बल्कि इनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। शायद कोई अनहोनी शरीर चोट लगी थी। एक्सीडेंट को हुए 12 घंटे गुजर गए और अभी तक दोनों बेहोश थे। डॉक्टर इनकी जिंदगी से मायूस से हो गए। तकरीबन 20 घंटे बाद इनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई और इन्हें ऑक्सीजन टैंक में रख दिया गया। दोनों को खून की बोतें चढ़ा दी गई। डॉक्टर इन पर मुख्तलिफ इंजेक्शन आजमा रहे थे, लेकिन बेहोशी के टूटने में नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके तकरीबन हादसे के 24 घंटे बाद इन्हें होश आ गया। शायद अभी इनकी उम्र बाकी थी, वरना डॉक्टर मायूस हो चुके थे। इस वक्त आधी रात थी, इनके करीब एक डॉक्टर और दो नर्सें मुस्तकिल ड्यूटी पर थीं। पहले सफदर को होश आया और चंद मिनट बाद कैप्टन शकील भी होश में आ गया। ऑक्सीजन टैंक हटा दिया गया। वो चंद लम्हे तक सिपाह नजर से इधर उधर देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी याददाश्त लौटने लगी और फिर थोड़ी देर बाद इनकी नब्ज मामूल पर आ गई। खून की बोतलें हटा दी गईं। अब वो पूरी तरह होश में थे। اب انہیں جولیا کی ہدایت اور اپنے کام کی فکر پڑ گئی۔ جسم میں ابھی شدید کمزوری موجود تھی، لیکن فرض ان کی نظر میں زیادہ اہم تھا۔ وہ استدعائی طور پر اٹھ بیٹھ گئے۔ لیٹے رہنے لیٹے رہیے، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے ان سے کہا، اور وہ دونوں دوبارہ لیٹ گئے۔ نرس ان کا خیال رکھنا، میں راؤنڈ لگا آؤں، ڈاکٹر نے ایک نرس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوکے سر، اس نرس نے جواب دیا، اور ڈاکٹر دوسری نرس کو لے کر راؤنڈ پر چلا گیا۔ کیپٹن سکی نے صفدر کی طرف دیکھا اور مخصوص اشارہ کر دیا۔ صفدر نے بھی اخبار میں جواب دیا۔ نرس، میرے سینے میں شدید درد ہے، اچانک صفدر بول پڑا۔ نرس تیزی سے صفدر کے قریب آیا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ صفدر نے اچانک نرس کا گلا پکڑ لیا، اور چند لمحوں بعد نرس بے ہوش ہو چکی تھی۔ نرس کو بے ہوش کرتے ہوئے صفدر کو ذہنی تناؤ اور روحانی تکلیف ہوئی، لیکن کیا کرتا، مجبوری تھی۔ وہ اس حالت میں بھی فرض کو اہمیت دے رہے تھے۔ نرس کے بے ہوش ہوتے ہی وہ دونوں بستر سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ اٹھنے سے اس کے جسم میں شدید درد ہوا، لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی، اور پھر وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے گیلری میں آئے، اور پھر گیلری سے پیچھے دروازے تک پہنچ گئے۔ خوش قسمتی سے اب ان کا ٹکراؤ کسی سے نہ ہوا تھا۔ وہ بآسانی دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ ان کے جسم پر مریضوں والا لباس تھا، اور لباس میں ریوالور کی موجودگی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ شکریہ کہ گرمیوں کا موسم تھا، ورنہ سردی میں تو اکڑ جاتے۔ اسپتال کی عمارت سے وہ چھت چھپاتے باہر نکل آئے۔ اسپتال سے کافی دور آ کر انہیں ایک ٹیکسی مل گئی، اور اس ٹیکسی نے انہیں واپسی کالونی پہنچا دیا۔ وہ کوٹھی نمبر 130 سے کافی پہلے ہی اتر گئے، اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کوٹھی کے عقب میں آ پہنچے۔ کمزوری اور درد سے ان کی بری حالت تھی، یہ بھی ان کی بے مثال قوت برداشت اور مضبوط قوت ارادی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس طرح دوڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک درخت کے ذریعے اپنی دیوار پھان گئے۔ اب دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پورج کی طرف بڑھے۔ پورج میں ایک لمبی چوڑی کار موجود تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی کار کے قریب پہنچے، انہیں دروازے کی چسکنی کھولنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے بڑے ستون کی آڑ میں ہو گئے۔ دروازہ کھلا، اور اس میں سے وہی طویل وقامت اور اس کا ساتھی باہر نکلا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے کار میں آ بیٹھے۔ کیپٹن شکی نے صفدر کی طرف دیکھا، اور پھر وہ دونوں لپک کر کار کی ڈگی کے قریب پہنچ گئے۔ صفدر نے ڈگی اٹھائی۔ خوش قسمتی سے ڈگی کا تالا بند نہیں تھا، شاید سامان نکال کر ڈرائیور تالا لگانا بھول گیا تھا۔ کیپٹن شکیل بڑی آہستگی سے ڈگی میں گھس گیا۔ اس پر کار اسٹارٹ ہوئی، اور پھر صفدر بھی پھرتی سے اندر آ گیا۔ دوسرے لمحے کار چل پڑی، دونوں بہو بڑی مشکل سے ڈگی میں سمائے۔ ڈگی کا ڈھکنا انہیں کھلے رکھا تھا تاکہ دم نہ گھٹ جائے۔ کار تیزی سے مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ جنگل میں گھس گئی۔ صفدر چونک پڑا، کیونکہ وہ ایک بار پہلے عمران کے ساتھ جنگل میں آ چکا تھا۔ جنگل میں کار دوڑتی رہی، اور ہچکلوں سے دونوں کی بری حالت ہو رہی تھی۔ ادھر اب اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ان پر کمزوری غالب آنے لگی تھی، لیکن دونوں بڑی ہمت سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھے۔ پھر کار ایک جگہ جا کر رک گئی۔ صفدر سمجھ گیا کہ وہ درخت والے گیٹ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ طالب اور اس کا ساتھی کار سے اترے، ڈینجر زون میں موجود پہرے دار درختوں سے نیچے اتر آئے۔ وہ انہیں سلام کرنے لگے۔ صفدر نے موقع غنیمت جانا، اور دونوں آہستہ سے ڈگی سے اتر کر کار کی آر میں ہو گئے۔ اتنے میں درخت والا دروازہ کھلا، اور طالب اور اس کا ساتھی اندر گھس گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ پہرے دار واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ وہ دونوں کھسکتے ہوئے درخت کے قریب آ گئے، اور پھر صفدر خطرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس جگہ ہاتھ پھیرا جہاں اس کا خیال تھا کہ دروازے کا بٹن ہوگا۔ دروازہ کھل گیا، صفدر لپک کر اندر چلا گیا۔ دوسرے نامے کیپٹن شکیل نے بھی جمپ کیا، اور وہ بھی اندر ہو گیا۔ پہرے داروں کی نظر ان پر نہ پڑی، شاید وہ اپنے درختوں پر چڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ ایک کمرے میں آئے، پھر دروازے کے قریب ایک پہرے دار نظر آ گیا۔ اس کے قریب انہیں رائفل بھی دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی نظر آ گئی۔ پہرے دار شاید کسی سوچ میں غرق تھا، یا پھر سستا رہا تھا۔ صفدر نے بڑی آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، اور دوسرے لمحے رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے تیزی سے رائفل گھمائی، اور اس سے پہلے کے پہرے دار چوک نہ ہو، رائفل کا بٹ اس کے سر پر لگا، اور وہ کوئی آواز نکالے بغیر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دونوں لپک کر دروازے سے نکلے، اور گیلری میں آ پہنچے۔ اچانک کیپٹن شکیل واپس مڑا، اور پہرے دار کی تلاشی لینے لگا، اور پھر اس کے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب اسے پہرے دار کی بیلٹ سے لگا ہوا ریوالور مل گیا۔ اب وہ دونوں مسلح تھے، وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ وہ انہوں نے اندر گھس کر ایک بڑا سا رسک لیا، لیکن وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ इस हालत में वो इंतजार कर नहीं सकते थे, इसलिए वो तालिब के पीछे अंदर चले आए। और कुछ सफदर को इस दफ्तर में रोशनी नजर आई जिसमें वो इस दिन मेजर असफाक से मिले थे। सफदर ने की होल से आंख लगाई और फिर वो अंदर का मंजर देखकर चौंक पड़ा। इससे कुर्सी पर बंदा इमरान साहब नजर आ रहा था। इससे कैप्टन शकील के कान में सरगोशी की और फिर कैप्टन शकील भी की होल से अंदर देखकर परेशान हो गया। बहरहाल इन्हें खुशी हुई कि वो नानिस्ता तौर पर सही वक्त और सही मकाम पर आए थे। मैं सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता हूँ ताकि रोशनदान से सिचुएशन कंट्रोल करूँ। तुम रिवॉल्वर लेकर यहीं खड़े रहो, अगर मैं गोली चलाऊं या आवाज दूं तो बिला डरे अंदर घुस आना, सफदर ने कैप्टन शकील के कान में कहा और इसने इस बात में सर हिला दिया। सफदर राइफल लेकर आगे बढ़ गया और फिर इसका अंदाजा सही निकला। जल्दी से सीढ़ियां मिल गई और थोड़ी देर बाद वो इस गली तक जहां पहुंचा जहां कमरे के रोशनदान थे। इसने इस कमरे का रोशनदान थोड़ा सा खोला, राइफल की नौल वहां आहिस्ता से टिका दी और अंदर झांकने लगा। दूसरे लम्हे इसके आसाब शिल हो गए। वहां इसने तालिब का चाकू इमरान के बाजू में घुसते देखा। इसने राइफल के ट्रिगर पर उंगली रख दी और फिर जरा सा पीछे हटकर राइफल की नौल को आगे बढ़ाया और निशाना ले लिया। नीचे हर शख्स इमरान की तरफ मुतवजा था और इससे पहले कि वो गोली चलाता वो तेजी से बदलती हुई सिचुएशन देखकर रुक गया और फिर इसने देखा कि तालिब ने अब दूसरे मुजरिम को कवर कर लिया है। वो खामोशी से बातें सुनता रहा। फिर इसने ये सुना कि तालिब इमरान को मशवरा दे रहा है कि अपने तमाम साथियों को वहीं बुलवा लें, तो इसने फैसला किया कि जल्द अज जल्द मामला खत्म कर देना चाहिए, कहीं बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। चुनाचे ने ट्रिगर दबा दिया, गोली ठीक निशाने पर लगी। तालिब उलट कर पीछे जा गिरा, चाकू इसके हाथ से छूट गया था, गोली इसके सीने में घुस गई थी। कमरे में मौजूद हर शख्स बुरी तरह चौंका। सफदर ने दूसरा फायर किया, दूसरी गोली टॉमी गन वाले की खोपड़ी उड़ा ले गई। इधर कैप्टन शकील गोली की आवाज सुनते ही अंदर लपका। सामने मेजर अशफाक था, हैंड्स अप, वो गुर्राया, मगर तालिब के साथी ने इस पर फायर कर दिया। कैप्टन शकील फुर्ती से पहलू बदल गया। फिर इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता कैप्टन ने फायर कर दिया, गोली इसकी पसलियां तोड़ती हुई निकल गई। कैप्टन शकील ने रिवॉल्वर मेजर अशफाक के कमर से लगा दिया। मेजर अशफाक ने हाथ उठा लिए। तालिब अभी फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। फिर इसके जिस्म ने एक झटका खाया, वो ठंडा हो चुका था। सफदर ने इस कमरे के रोशनदान को खोला और फिर वहीं से छलांग लगा दी। फर्श पर गिरते ही वो तेजी से उठा और बंधे हुए इमरान की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी, जो हैरतज़दा बैठा ये तमाशा देख रहा था। रस्सियां खोलते ही इमरान उठा और फिर इसने तेजी से टॉमी गन उठा ली। सफदर मेजर अशफाक को कुर्सी से बांध दो, इमरान ने सफदर को हुक्म दिया और सफदर ने मेजर अशफाक को कुर्सी से बांध दिया। मेजर अशफाक सिचुएशन को इस तरह बदलते देखकर बेहोश हो चुका था। तुम इन्हें कवर रखो, मैं अभी आया, इमरान ने कहा और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर निकल आया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दरवाजा दोबारा अंदर दाखिल हो गया। इतने दरवाजा बंद कर लिया, इसके हाथ में छोटा सा बॉक्स था। इसने फुर्ती से बॉक्स खोला, इसमें मेकअप का सामान था। इसने तेजी से बंधे हुए मेजर के मुंह पर अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। मेजर अशफाक ने जद्दोजहद करनी चाही लेकिन सफदर ने इसका सर दोनों हाथों से पकड़कर काबू कर लिया। थोड़ी देर बाद मेजर अशफाक इमरान का हम शक्ल बन चुका था। इमरान ने कैप्टन शकील के हाथ से रिवॉल्वर लिया और फिर इसका दस्ता पूरी कुव्वत से मेजर के सर पर दे मारा। दूसरी दर पर मेजर बेहोश हो चुका था। अब इसने कैप्टन शकील पर तालिब का मेकअप करना शुरू कर दिया। इससे फारिग होकर तालिब के साथी का मेकअप सफदर पर किया। थोड़ी देर बाद इन दोनों की शक्लें बदल चुकी थी। फिर इसने तालिब और इसके साथी कैप्टन शकील और सफदर का मेकअप किया। तुम दोनों कपड़े बदल दो, इमरान ने इनसे मुखातिब होकर कहा। मगर कपड़े कहाँ हैं, इन दोनों ने कपड़े तो लहू से तर हैं, कैप्टन शकील ने कहा। फिर इमरान की तलाश करने पर ऑफिस से मुंसलिका बाथरूम में ही इन्हें कपड़ों की एक अलमारी नजर आ गई। दोनों ने कपड़े तब्दील किए और अपने कपड़े इन्होंने मुर्दा तालिब और उसके साथी को पहना दिए। इमरान ने बेहोश मैनेजर से कपड़े तब्दील कर लिए। इस तमाम काम में इमरान ने बेहद फुर्ती दिखाई। नतीजा ये कि तकरीबन आधे घंटे में दो फारिग हो चुके थे। अब तक कोई भी और आदमी कमरे में नहीं आया था, शायद मेजर की तरफ से इन्हें सख्त हिदायत थी। दूसरा, इन्हें यहाँ की सिचुएशन का भी तो इल्म नहीं था। इसने मेज पर लगे हुए घंटी को बटन दबा दिया। चल नमे बाद एक नौजवान हाथ में टॉमी गन लिए अंदर दाखिल हुआ। अंदर की सिचुएशन देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिटक गया। इमरान मुंह पर निकाब लगा चुका था। दो और को बुलवाओ, इमरान ने इसे मैनेजर की आवाज और हुक्म दिया और वो तेजी से वापस मुड़ गया। चल लम्हे बाद इसके साथ ही दो और आदमी अंदर दाखिल हुए। तुम बाहर डेंजर जोन वालों को मतला करो कि हम एक अहम काम के लिए बाहर जा रहे हैं, होशियार रहें और तुम दोनों इनको उठाओ। इमरान ने तालिब और उसके साथी की तरफ इशारा किया। पहले वाला नौजवान बाहर चला गया जबकि इसके दोनों साथी इन दोनों को उठाने लगे। सफदर ने आगे बढ़कर बेहोश मेजर अशरफ को कांधे पर लाद लिया और फिर वो सब तेजी से गैस की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो दरख्त वाले दरवाजे से निकलकर जंगल में आ गए। तुम लोग होशियारी से पहरा दो, मुझे शायद चंद घंटे लग जाएं, इमरान ने इनसे मुखातिब होकर कहा। ओके जी, वह आप बेफिक्र रहें, इनके लीडर ने कहा। और फिर इमरान, कैप्टन शकील और सफदर कार में बैठ गए और कार तेजी से वापस दौड़ने लगी। होटल ताज के कमरे में महफिल जमी हुई थी। इमरान, कैप्टन शकील, सफदर और जौलिया कमरे में मौजूद थे। इमरान साहब के अड्डे पर कब्जा कर लिया है, सफदर ने पूछा। हाँ सफदर, सुबह मैंने एक्सेटो के हवाले से फौज को कॉल किया और फिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद अड्डे पर हमारा कब्जा हो गया। वैसे वहां से थोड़े से मुजरिम थे, बाकी सब अपने ही फौजी थे। आखिर ये किस्सा क्या था? अपनी तो समझ में नहीं आया, जौलिया ने पूछा। हीरा में तोते का किस्सा था, इमरान बोला। प्लीज इमरान साहब, संजीदगी से बताएं, कैप्टन शकील ने दरख्वास्त की। जबान से बताओ या संजीदगी से, इमरान ने कैप्टन शकील पर चोट की। इमरान, जौलिया ने इल्तिजा आमेज रहते हुए कहा, क्योंकि वह तीनों हरगिज इस केस को नहीं समझ सके थे। अच्छा भाई सुनो, अब तुम तीनों जो दरख्वास्त कर रहे हो तो सुनो, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा, इमरान ने कहा। आप बताएं तो सही, सफदर ने कहा। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क से प्रेमनगर के इस जंगल में खुफिया जमीन, दो मिसाइल अड्डे और एक ताकतवर बॉर्डर स्टेशन बनाने का मंसूबा बनाया। जंगल का ये हिस्सा जहाँ अड्डा मौजूद है, चूंकि पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरहद के करीब है, इसलिए जगह मुनासिब ख्याल की गई। मंसूबा तैयार हुआ, फिर अड्डा बनना शुरू हो गया। ये अड्डा बनाने वाले फौजी थे। ये मंसूबा इतना खुफिया रखा गया कि प्रेमनगर के नवाब तक को भी इसकी हवा ना लगने दी गई, मगर न जाने कैसे पड़ोसी मुल्क के जासूसों के कानों में इस मंसूबे की भिनक पड़ गई। इन्होंने इसके मुताबिक तफसीलात अपने मुल्क को भेज दी। अब इधर एक भयानक मगर सादा साजिश तैयार की गई। इन्होंने अपने मुल्क के दो नामवर जासूस मिर्जा अशफाक और तालिब की सरकर्दगी में दो पार्टियां भेजी। इधर पाक एशियाई अड्डे के इंचार्ज का नाम भी मिर्जा अशफाक ही था। दोनों दुश्मन एजेंट शैतान के नाम से पुकारे जाते थे। बहरहाल ये दोनों शैतान यहां आए और मिर्जा अशफाक ने अड्डे पर कब्जा कर लिया। मेजर अशफाक को कतल करके खुद इसकी जगह संभाली और अपने दूसरे साथी भी अपने पोस्टों पर लगा दिए। इधर तालिब अपनी पार्टी के साथ बाहर रहने लगे। इसके जिम्मे ये ड्यूटी थी कि अगर कोई दूसरी पार्टी या हुकूमत के अफराद को इस मिशन पर शक हो तो वह इनका बंदोबस्त करे। दोनों पार्टियां काम करती रहीं। हमारी हुकूमत ये समझती रही कि अड्डा बन रहा है, तमाम खर्चा हमारी हुकूमत उठा रही थी। इधर पड़ोसी मुल्क के इंजीनियरों ने भी इस अड्डे के साथ ही अपनी हदूद में अपने मुल्क के लिए एक खुफिया अड्डा बनाना शुरू कर दिया। इनका प्रोग्राम ये था कि हमारे अड्डे का कंट्रोल जोन इस तर्ज पर तैयार किया जाए कि वो अपने अड्डे से जिस वक्त भी चाहें इसे कंट्रोल कर सकें। दोनों अड्डे के दरमियान एक खुफिया सुरंग तैयार कराई गई ताकि वो जिस वक्त चाहेंगे इस अड्डे पर बआसानी कब्जा करके इस अड्डे को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। काम होता रहा और किसी को इस भयानक साजिश की खबर ना हो सकी। इधर अड्डे को खुफिया रखने के लिए हुकूमत की इजाजत से जंगल में चंद शिकारियों को कत्ल कर दिया गया ताकि लोग इधर आने से घबराने लगे। इसके लिए मखसूस हथियार इस्तेमाल किए गए जिसकी वजह से लोगों में जिन भूतों का तसव्वुर फैलने लगा और ये जगह पुरस्तरार और आसेब ज़दा समझी जाने लगी। चूंकि नवाब साहब को इसके मुतालिक इल्म नहीं था और शिकारियों की वजह से इनकी आमदनी कम हुई तो इन्होंने सर सुल्तान से मदद की और दरख्वास्त की कि जो इनके दोस्त हैं सर सुल्तान खुद इस मंसूबे से आगा नहीं थे क्योंकि ये सब टॉप सीक्रेट रखा गया था। सर सुल्तान ने दोस्ती से मजबूर होकर एक्सेटो को दरख्वास्त की और एक्सेटो ने मुझ कुर्बानी के बकरे को आगे कर दिया। यहां आकर मैंने तहकीकात की और फिर अचानक सूरत हाल बदल गई जब हमें यकीन दिलाया गया कि ये अड्डा हमारी हुकूमत ही बना रही है, यहां कोई मुजरिमाना काम नहीं हो रहा। मैंने एक्सेटो को फोन किया, एक्सेटो ने तस्दीक की बात की। अब यहां अगर केस ठप हो गया, दरअसल मुजरिम हमें चक्कर दे गए और बात ये निकली कि चकरा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। छिजोलिया को मैंने चांदी के ताकू पर लगा दिया और खुद जब बाहर निकला तो मेजर स्टॉक नजर आ गया। फिर इसका ताकू करके मैं तालिब के ठिकाने पर जा पहुंचा। जोलिया भी गिरफ्तार होकर वहीं आई और फिर इनकी बातें सुनकर मैं मशकूक हो गया। मैंने जोलिया के जरिए तुम्हें हिदायत पहुंचाई कि तालिब को अगवा कर लिया जाए। खुद मैं नंबर 2 को खत्म करके अड्डे में घुस गया और वहां फाइल निकालते हुए गिरफ्तार हो गया। मेजर इशराक ने तालिब को वजारा भेजा। तालिब अपने एक साथी के साथ वहां आ पहुंचा। अब सूरत हाल ये थी कि मुझे यकीन था कि तालिब के भेस में कैप्टन शकील है और उसके साथ टी के भेस में सफदर। इधर तुम लोगों ने इज्जत से काम लिया और वक्त पर वहां पहुंच गए, वरना मैं तो यकीन के भरोसे पर मारा जाता, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा और उसका सिचुएशन का तस्वुर करके सब हंस पड़े। तारिक इधर चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं इसे कैप्टन शकील समझकर इसकी फितरी अदाकारी और मुकम्मल मेकअप पर दिल ही दिल में इश्क कर रहा था। इमरान ने चलना मुबाद दोबारा बोलते हुए कहा और इमरान एक बार फिर कहकाओं से गूंज उठा। अब आगे तुम जानते हो क्या, इमरान ने कहा। क्या हुआ, जोलिया बोली, क्योंकि वो ला इल्म थी। निकाह हुआ और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा और जोलिया भी पड़ गई। शट अप बदतमीजी, जोलिया गुस्से से चिल्लाई। क्यों, निकाह होने में बदतमीजी कहां से दाखिल हो गई, इमरान ने हैरत से कहा और जोलिया ने सैंडल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अच्छा अच्छा, हो गई दाखिल बदतमीजी, बस अब तो खुश हो गई, इमरान ने इसी लहजे में कहा कि जोलिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। बस इसी तरह हंसती रहा करो ताकि उम्मीद कायम रहे, इमरान ने हाँक लगाई और जोलिया का फिर मुंह बन गया। आप मिस जोलिया को बहुत तंग करते हैं इमरान साहब, सफदर ने बीच बचाव करते हुए कहा। मेरे तंग करने से तो ये स्मार्ट है, वरना भेस को गौर से देख लो, इसे कोई तंग नहीं करता, इमरान ने कहा तो तेजी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। ये इमरान इन दोनों से भी बड़ा शैतान है, सफदर ने कहा। यानी 10 करोड़ में 2 शैतान नहीं बल्कि 10 करोड़ में 1 बड़ा शैतान, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, इसीलिए तो इमरान और शैतान हम हैं, काफी हैं, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इन तीनों के बेसाख्ता कहकाओं से कमरा गूंज उठा। खत्म शुद। गोल्डन क्रॉस मुकम्मल नावल, मुसन्निफ मजर करीम MA। गोल्डन क्रॉस यहूदियों की एक ऐसी तंजीम जिसने इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल नाकामी से दोचार कर दिया। गोल्डन क्रॉस जिसने पाक एशिया में अपनी कार्रवाई और तेजी महारत से मुकम्मल कर ली कि इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस मुंह देखती रह गई। वो लम्हा जब टाइगर अकेला ही बैन अक्वामी तंजीम गोल्डन क्रॉस से टकरा गया। वो लम्हा जब इसराइल के सदर को इस बात का एतराफ करना पड़ा कि टाइगर की शक्ल में पाक एशिया को दूसरा इमरान मिल गया है, कैसे और क्यों। वो लम्हा जब जोलिया की वजह से मिशन मुकम्मल हो सका, वरना इमरान और दूसरे साथी बेबस हो चुके थे। इंतहाई हैरतअंगेज वाकियात, तेज रफ्तार एक्शन और आसाब शिकन सस्पेंस से भरपूर एक ऐसा नॉवल जो हर लिहाज से यादगार हैसियत का हामिल है। 5+ मुसन्निफ मजर करीम MA। मुकम्मल नॉवल। तालूस यहूदियों की एक इंतहाई खुफिया तंजीम जिसने पाक एशिया में खुफिया मिशन इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, मगर तालूस जिसने पाक एशिया में मुकम्मल मिशन की मुकम्मल तकमील के लिए इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा प्लानिंग की, ऐसी प्लानिंग की कि इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस इसे समझ ही ना सकी। क्यों। फरखंडा तालूस की एजेंट जिसमें खावर भी दिलचस्पी लेने लगी, क्या वाकई। क्रॉस बंगल यहूदियों की बैन अक्वामी तंजीम जिसने सालूस की प्लानिंग को कमजोर करार देकर अपना एक्शन ग्रुप भिजवाया और इस ग्रुप ने वाकई इंतहाई तेज रफ्तारी से मिशन पर काम शुरू कर दिया। वो लम्हा जब टाइगर इमरान दोनों को अस्पताल पहुंचना पड़ा, क्यों। वो लम्हा जब ब्लैक जीरो की मौजूदगी में दानिश मंजिल पर रीड किया गया और रीड करने वाले इंतहाई कामयाबी से दानिश मंजिल से एक अहम फाइल ले उड़े, मगर कैसे। वो लम्हा जब सिद्दीकी को अकेले सालूस की 4 लेडी एजेंटों से इंतहाई खौफनाक मुकाबला करना पड़ा, ऐसा मुकाबला कि जिसका हर लम्हा कयामत का लम्हा बनकर रह गया, मुसलसल और तेज रफ्तार जिस्मानी फाइट से भरपूर, इंतहाई दिलचस्प कहानी, खौफनाक जिस्मानी फाइट और लम्हा व लम्हा बदलते हुए वाकियात से भरपूर एक दिलचस्प और यादगार एडवेंचर। वायलेंट क्राइम मुसन्निफ मजर करीम MA। मुकम्मल नॉवल। वायलेंट क्राइम एक ऐसा जुर्म जिसमें तशद्दुद का अंतर नुमाया होता है। वायलेंट क्राइम एक ऐसा इंसानियत सोच जुर्म जिसे खेल बना लिया गया है। वायलेंट क्राइम जिसके खिलाफ इमरान और फोर्स्टार ने कार्रवाई शुरू की तो इन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्यों कैसे। वो लम्हा जब अगवा बड़ा तावान के केस पर काम करते हुए टाइगर को एक पेशावर कातिल के हाथों हलाक कर दिया गया। क्या वाकई टाइगर हलाक हो गया? नाजिया क्रिश्चियन रिपोर्टर, जिसने सालिया के साथ मिलकर वायलेंट क्राइम के खिलाफ काम किया और फिर नाजिया को अगवा कर लिया गया, नाजिया का क्या अंजाम हुआ? वो लम्हा जब इमरान इसके साथी और फिर स्टार सब अगवा बड़ा तावान के सबसे बड़े मुजरिम के हाथ चढ़ गए, फिर इनका अंजाम क्या हुआ? क्या इमरान इसके साथी और फोर स्टार वायलेंट क्राइम के खिलाफ कार्रवाई में कामयाब हो सके? या मुनफरद अंदाज में लिखा गया ऐसा नावल जो कारियान को सोचने पर मजबूर कर देगा। विनिंग पार्टी, मुसनिफ मजर करीम एम ए, मुकम्मल नावल। ब्लैक रॉड, एक्रीमिया की ऐसी एजेंसी जिसका रिकॉर्ड शानदार था। जीम्स और मारिया, ब्लैक रॉड के सुपर एजेंट जिन्होंने पाक एशिया के पहाड़ी इलाके में खुफिया लेबॉर्टरी को तबाह करना था, मगर जीम्स और मारिया जिन्होंने न सिर्फ खुफिया लेबॉर्टरी को ट्रेस कर लिया बल्कि इसे तबाह करने के इकदाम भी करते रहे, लेकिन इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस सब कुछ जानने के बावजूद हरकमत में न आए, क्यों? वो लम्हा जब इमरान और पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की जगह टाइगर जोसेफ और जमाना मैदान में उतरे और फिर एक्रीमियन एजेंट्स ने टाइगर को माफूल फितर करार दिया, क्यों? वो लम्हा जब जोसेफ और जमाना ने अपनी जान पर खेलकर लेबॉर्टरी को बचा लिया लेकिन वो फिर भी नाकाम करार दिए गए, क्यों? गैर मुल्की एजेंट जो पाक एशिया में मिशन मुकम्मल करने के बाद वनिंग पार्टी करार दे गए, हालांकि इंतहाई दिलचस्प यादगार और मुनफरिद अंदाज की कहानी। ये किताब यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। किताब 10 करोड़ में दो शैतान, आवाज इसरा सरवर, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ मजहर कलीम एम ए। मजीद कुतुब की रिकॉर्डिंग के लिए राबता करें कॉन्टैक्ट नंबर 03002919600। अब इसरा सरवर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।